नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मिले, मेरी जिंदगी में थे हसरतों के मिले, जीते थे फिर भी अकेले, साथ किसी
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में यीशु के तीन तथ्यों के साथ समाप्त किया था कि वह परमेश्वर है, वह मृतकों को जिलाने का अधिकार रखता है, वह न्याय करेगा। अब यीशु एक और सच्चाई को प्रकट करता है जिसे हम आज के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आए, उससे प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आज आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारी आवश्यकताओं को ढूंढने पाए और हमारे जीवन से बात करे ताकि हम उसे अपने जीवन में उतार कर एक सही मार्ग पर चल सकें, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंता और परेशानी में हैं, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपनी नौकरी के लिए और आर्थिक समस्याओं के लिए। पिताजी, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे अपने जीवन में शांति पा सकें, आपको ग्रहण कर सकें और आपको महिमा देने पाएं। हम जानते हैं कि आपका वचन जो दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है, आज का वचन भी हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बातचीत करने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 25 और 28 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यीशु किस समय की चर्चा कर रहा है। वह हमारे इसी युग की चर्चा कर रहा है। उसकी वाणी सुनने वाले मृतक कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 से 26 में यीशु मरियम और मार्था से कह रहा था, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यदि वह मर भी जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि कब्र में पड़ा मुर्दा सुनता है क्या? जी नहीं, यह आत्मिक मृत्यु के संबंध में कहा गया है। निसंदेह वह समय आएगा जब मृतक उसकी वाणी सुनेंगे, परंतु इस युग में आत्मिक रूप से मरे हुए उसकी वाणी सुनेंगे और जिएंगे भी। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को लिखा कि वे पहले अपराध और पाप में मरे हुए थे। सबकी यही दशा है, और जो मसीह का वचन सुनता और उसके भेजने वाले में विश्वास लाता है उसके पास अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, वह मृत्यु आत्मिक मृत्यु से जीवन में प्रवेश करता है। अतः यही वह समय है जब यीशु आत्मिक अनंत जीवन देता है, और दूसरा समय वह होगा जब वह कब्रों में से मृतकों को जिलाएगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु में जीवन है और वह जीवन देता है, वह जीवन दाता है। परमेश्वर पिता ने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, परंतु वह अभी न्याय नहीं करेगा। न्याय करने वह फिर से आएगा, उस समय कब्रों में मृतक भी उसकी वाणी सुनेंगे। हम यूहन्ना 5 उसके 28 से 29 पद में पढ़ते हैं, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहाँ 2 पुनरुत्थान का उल्लेख है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह अधिक स्पष्ट है, 20 उसके 4 से 6 पद में पहले पुनरुत्थान का उल्लेख है, और 20 उसके 11 से 15 पद में दूसरे पुनरुत्थान का उल्लेख है। पहला पुनरुत्थान उद्धार प्राप्त मनुष्यों का है, यह परमेश्वर की कार्यसूची में है। और अब अगला चरण है जिसे हम पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 में पाते हैं। लिखा है उठाया जाना, कहता है यह एक भावी घटना है जिसका कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, यह कभी भी हो सकता है। मित्रों, प्रभु के सब विश्वासी जीवित तथा मृतक उठाए जाएंगे, यह पहला पुनरुत्थान है। महाक्लेश के समय अनेक विश्वासी शहीद होंगे जो महाक्लेश के पश्चात पुराने नियम के पवित्र जनों के साथ फिर जी उठेंगे और इस पृथ्वी पर सदा के लिए जीवित रहेंगे। इसे यीशु ने जीवन का पुनरुत्थान कहा है, यह पहला पुनरुत्थान है। अब हम देखते हैं दूसरा पुनरुत्थान होगा जो दंड का पुनरुत्थान है, जिसमें सब युगों के अविश्वासी जी उठेंगे और श्वेत सिंहासन के सामने उनका न्याय होगा। मित्रों, उन्हें पवित्र परमेश्वर के समक्ष अपनी दलील रखने का अवसर दिया जाएगा, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। हम लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 47 और 48 पद में उनके अलग अलग दंड का उल्लेख पाते हैं। हम यूहन्ना 5 उसके 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यह यीशु की मानवीय सीमा है कि वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। आप में और मुझ में पुराना स्वभाव है जो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं वरन परमेश्वर का विरोधी है। इसी कारण प्रभु ने निकोदिमुस से कहा था कि उसे नया जन्म पाना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे मित्रों, हमें नया जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव सुधारा नहीं जा सकता, वह आदम के पतन से ही विरोधी है। अब हम प्रभु यीशु के उन दावों के प्रमाण को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। मित्रों, पुराने व्यवस्था में दो या तीन गवाहों की साक्षी से कोई बात स्थापित की जा सकती थी। मनुष्य की अपनी गवाही मानी नहीं जाती है। एक और है जो मेरी गवाही देता है। वे सोचते होंगे कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहा है, परंतु वह किसी मनुष्य के बारे में नहीं, किसी और के बारे में कह रहा था। हम यूहन्ना 5 उसके 33 पद में पढ़ते हैं, तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। मित्रों, यूहन्ना तो उसका एक गवाह था ही, परंतु एक गवाह और है। इस प्रकार उसके दो गवाह हैं। हम यूहन्ना 5 उसके 34 पद में पढ़ते हैं, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। ध्यान दीजिए, उसका गवाह मनुष्यों से बढ़कर होगा। वह यूहन्ना को भी अपना गवाह कहता है। वह यीशु का दीपक था। हम यूहन्ना 5 अध्याय उसके 35 और 36 पद में आगे पढ़ते हैं, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। यीशु के अधिकार को सत्यापित करने वाली बातें उसके चमत्कार थे। यदि आज कोई कहे कि उसके पास यीशु की नाई चमत्कारी सामर्थ है, तो मेरे विचार में यह निंदा है। यीशु के चमत्कार उसके स्वर्गीय अधिकार के चिन्ह थे। मेरे मित्रों, यीशु ने चंगाई की सभाएं नहीं की थी और न ही चंदा मांगा था। उसने रोगियों को पंक्ति में खड़ा नहीं किया था। वह तो चलकर मार्गों में जाता था और रोगियों को चंगा करता था। मेरे मित्रों, यीशु ने 100-200 रोगियों को चंगा नहीं किया था, उसने हजारों रोगियों को चंगा किया था। उसके चमत्कारों का खंडन किसी ने नहीं किया। ये तो 19 वर्ष बाद हजारों मील दूर नाम कमाने के लिए विद्वानों ने ऐसे विचार प्रकट किए कि यीशु ने चमत्कार नहीं किए, परंतु उसे कुछ सिद्ध नहीं होता। यीशु के चमत्कार उसके गवाह थे कि वह पिता की ओर से आया है, अर्थात पिता के द्वारा भेजा गया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 37 से 39 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। 39 पद में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्रिय मित्रों, यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं है कि उसे धर्मशास्त्र में खोजें। वह कह रहा है कि यदि कोई धर्मशास्त्र में अनंत जीवन की खोज करेगा तो यीशु को ही पाएगा। मेरे मित्रों, आपके धर्मशास्त्र की खोज में आपको यीशु मिलना है, अन्यथा आपकी खोज व्यर्थ है, आपका परिश्रम व्यर्थ है। हम यूहन्ना 5 उसके 40 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मित्रों, ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्र यीशु की गवाही देता है, परंतु धर्मगुरु उसे मानते नहीं, वे यीशु को स्वीकार नहीं करते थे। हम यूहन्ना 5 उसके 42 और 43 पद में पढ़ते हैं, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यहां पर ध्यान दीजिए, ख्रिस्त विरोधी अपने नाम से आएगा और संसार उसे स्वीकार कर लेगा। वह अपनी छवि द्वारा सबको मूर्ख बनाएगा, और यहां पर प्रभु यीशु है जिसे लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम यूहन्ना 5 उसके 44 पद में पढ़ते हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वितीय परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। वे चाहते थे कि मनुष्य उन्हें सराहे अर्थात उन्हें आदर दे। परमेश्वर को प्रसन्न करने की मनोकामना उनके जीवन में नहीं थी। आज भी कलीसियाओं की यही प्रवृत्ति है कि मनुष्य से प्रशंसा पाएं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, अतः वे परमेश्वर के वचन के सत्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। वह आदर जो परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। हम यूहन्ना 5 उसके 45 से 47 पद में पढ़ते हैं, यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों को क्यों कर प्रतीति करोगे। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है। पंच ग्रंथ में यीशु की चर्चा की गई है और मेरा यह विश्वास है कि वह पंच ग्रंथ के हर एक पृष्ठ पर है। उसने अर्थात मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। पुराने नियम का खंडन करने वाला सावधान, वह वास्तव में प्रभु यीशु की आलोचना कर रहा है। पागलखाने में एक पुरुष इमारत की नींव खोद रहा था। किसी ने उससे कहा, तुम इसकी नींव क्यों खोद रहे हो, यह तो तुम्हारा घर है। उस पागल ने कहा, मैं क्या यहां रहता हूं, मैं तो ऊपर की मंजिल में रहता हूं। मेरे मित्रों, आज अनेक मूर्ख कहते हैं कि हम नए नियम के युग में हैं, परंतु सत्य तो यह है कि पुराना नियम नए नियम की नींव है। यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। मेरे मित्रों, विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है। वह फिर आएगा और अविश्वासियों का न्याय करेगा, परंतु उससे पूर्व अपने विश्वासियों को इस संसार से वह उठा ले जाएगा। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी ध्यान देना है कि क्या हम उस पागल की तरह उस नींव को तो नहीं तोड़ रहे हैं जिस घर में हम रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम कई बार पुराने नियम को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों को हम विश्वास नहीं करते हैं, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं और हम सिर्फ नए नियम की बातों को ही मानना चाहते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि पुराने नियम हमारे विश्वास का आधार है, हमारा नींव है जिस पर प्रभु यीशु ने अपने नींव को बढ़ाया, और आज उसी के द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी समझने की जरूरत है, अर्थात मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि हम किस राह पर हैं। क्या हम सिर्फ पुराने नियम को पकड़े हुए हैं या हम नए नियम की उन बातों को भी मान रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कहा है। यह सच है कि वह हमारा न्याय करेगा, हमारे कार्यों के मुताबिक हमारा न्याय करेगा, विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय होगा। लेकिन यह भी जाने कि हम इस संसार से उठा लिए जाएंगे और हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम उससे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। आज इस जगत में कितने ही लोग हैं जो इस संसार में भटक रहे हैं कि वे उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने है, लेकिन लोग उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या आज आप भी उनमें से एक हैं? मित्रों, आज आप एक बार उसे निहार कर देखें, उसे पुकार कर देखें और निश्चय जाने कि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी जरूरतों को समझता है और वह निश्चय ही आपको उससे मुक्ति देगा। आपके जीवन के उस पश्चातापी हृदय को देखकर वह आपके जीवन में आएगा और अपनी शांति आपके जीवन में देगा। मेरे मित्रों, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि निश्चय ही आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को सीखा है जो आपके लिए आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के निकटता में आए और इस वचन के साथ अपने जीवन को अर्पित करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से फिर से एक बार आपने हम सब से बातचीत किया है और इस बात का हमें स्मरण दिलाया है कि कई बार हम जिस घर में रहते हैं उसे ही तोड़ते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम उसी घर में हैं। मेरे मित्रों, आज हम प्रभु की निकटता में आए, उससे कहें, प्रभु आज हमें आप क्षमा करें, हमारे गलतियों से हमें उबारें और आज के दिन आप हमारे जीवन में अपने कार्यों को आरंभ करें, ताकि प्रभु हम भी उस उद्धार के आनंद को पाकर आपको महिमा दे सकें। इस समय हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु एक एक के जीवन के हर एक आवश्यकताओं के अनुसार आप उनसे बातचीत करें, उनकी सहायता करें। विशेष करके उनके लिए प्रार्थना है जो अपने जीवन को आपके निकटता में लाना चाहते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, हर एक प्रकार की बुरी आदतों से उन्हें छुटकारा प्रदान करें। जिस प्रकार प्रभु आपने अद्भुत कार्य अपने रहते हुए संसार में किए हैं, आज भी आप उनके जीवन में करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन मीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मन। मेरा संग